मोती ले सबके माला एक बनानी है। तुम रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है।
एकता लानी है।
गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है।
हर विजयी मोती ज्ञान सुई से पिरोते जाना है।
देवलोक की शोभा बढ़े हो, देवलोक की शोभा बढ़े अब देवी हार सजाना है।
इस माला के हर मोती में चमक रूहानी लानी है। हाँ चमक रूहानी लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल।
आज स्वयं शिव चुनने आए इस धरती के फूल।
कई जन्मों के पापों की हो, कई जन्मों के पापों की जिन पे जमी थी धूल।
में खुशबू भर कर सुगंध अनोखी फैलानी है। सुगंध अनोखी फैलानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो।
हर मानव को एक करे जो कर्म तेरा वो न्यारा हो।
शिव से नाता सबका जुटाना हो, शिव से नाता सबका जुटाना यही तुम्हारा नारा हो।
सबको एक बनाए जो तेरी वो कहानी है, तेरी वो कहानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
एक स्नेह के धागे से, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है।
एकता लानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
ओम शांति। आज का टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने भी ये टॉपिक पहली बार ही सुना है। आपको पता है जब किसी का पैर टूट जाता है और डॉक्टर कहता है आप ध्यान से चलना, वो ध्यान से चलना बड़ा खतरनाक शब्द होता है कि पहले से टूटा हुआ है पैर, अब ध्यान से ना चले तो दोबारा से टांग वहीं टूटेगी। और जब बचपना या युवा अवस्था होता है तो कोई नहीं कहता ध्यान से चलना है, कूदते रहते हैं, ये कूदते रहते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब जब हमारा वर्क और लाइफ अलग हो जाती है। लाइफ, ब्रह्मा कुमारी जी ने सांस लेने को लाइफ नहीं कहते कि इसकी सांस चल रही है तो इट मीन्स ही इज अलाइव, ये जिंदा है ना। लाइफ का मतलब वो पल, वो क्षण, वो स्पैन जब आप जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वो लाइफ। जैसे बच्चे खेलते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और खेलते खेलते वो क्रिकेटर बन गए और अब वो काम कर रहे हैं, उनको उस एक एक मैच का पैसा मिल रहा है, तो उनके लिए वर्क भी क्या हो गया, उनकी लाइफ हो गई। तो नाउ दे आर एंजॉयिंग वर्क, वो अभी अपने काम का आनंद ले रहे हैं, काम का आनंद ले रहे हैं। कुछ माताएं बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती है, पता लगा उन्होंने मिलकर रेस्टोरेंट खोल लिया और नई नई डिश बना रहे हैं, तो वो अपने उस शौक को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो काम में भी रस ले रहे हैं, काम में भी रस ले रहे हैं। बहुत कम दुनिया में ऐसे किस्मत वाले हैं जिनके लिए उनका शौक, उनकी पसंद उनका प्रोफेशन बन जाए, उनका प्रोफेशन बन जाए। कोई एक्टिंग का शौक है और वो एक्टर बन जाए, उस एक्टिंग का उसे पैसा भी मिल रहा है और वो जी भी रहा है और आनंद भी ले रहा है, तो तृप्ति हो गई उसको। लेकिन 90-80% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शौक कुछ और होता है, काम कुछ और कर रहे हैं, जाना कहां था, जा कहां रहे हैं, तो समझ नहीं आता। अब वो उनके सपने तो कुछ और होते हैं। ऐसे कई हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते थे और नौकरियां कर रहे हैं, और ऐसे कई हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में थे, नहीं मिली तो मजबूरी में बिजनेस कर रहे हैं। तो यहां ये बड़ा अच्छा परम शक्ति ने समझाया, दुनिया ने क्या समझाया और फिर बाबा ने क्या। बाबा शब्द जब मुंह से निकले तो ये ध्यान रखना, हम कोई दाढ़ी मूछ वाले को बाबा नहीं कहते, हम जो ज्योतिर्बिंदु है उसे प्यार से बाबा कहते हैं, उसे रिश्ते से जोड़ते हैं ताकि अपनत्व की भावना आए कि वो मेरा है, मेरा बाबा है। लोग क्या कहें कि कर्म में बैलेंस रखना है, फैमिली के साथ ऐसा करना, काफी सारी उन्होंने चीजें बताई। बाबा ने बहुत प्यार से कहा कर्म को एंजॉय तो करना ही करना है, कर्म को एंजॉय तो करना है, लेकिन कर्म के साथ एंजॉय, कर्म और फल तीनों जुड़ते चले जाए। कैसे? उदाहरण देते हैं, आप में से कोई एक व्यक्ति नौकरी पे जाता है या बिजनेस करता है या घर पे काम करता है, काम करने वालों को भी वर्किंग कहेंगे, वर्क है, वो भी वर्क है, ऐसा नहीं जो ऑफिस जा रहे हैं वही वर्क है बाकी कोई वर्क नहीं है, वो भी वर्क है, सुबह से शाम तक वर्क करना, और आपकी तो 8 या 10 घंटे की ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी बहनों की तब शुरू होती है जब आप सोए होते हैं, और जब पुनः जाग के फिर दोबारा से सो जाते हैं तब तक भी उनकी ड्यूटी लगी होती है। उदाहरण के लिए एक लड़का है, वो काम पर जाता है और बहुत मन लगाकर काम करता है और इतना आनंद लेता है, वो पेंटर है, ड्राइंग, तो ड्राइंग बनाता है और उसकी ड्राइंग बिकती है, बहुत आनंद ले रहा है, तो उसके लिए वर्क और लाइफ अच्छा हो गया, वर्क में उसकी लाइफ है। अब उसका किसी से प्रेम हो गया, किसी से प्रेम हो गया, अब वो पेंटिंग बना रहा है, उसको याद भी वो आ रही है या आ रहा है, जिससे प्रेम है वो याद आ रहा है, अब उसके प्रेम में सरोबार होकर फिर वो पेंटिंग बना रहा है, पहले भी पेंटिंग बनाता था, आनंद लेता था, पेंटिंग आनंद में प्यार भी जुड़ गया, आनंद लेना शुरू करा, प्यार भी जुड़ गया, तो ये अब उसमें आनंद आने लग गया, वो वर्क के समय भी उसको याद कर रहा है कि मैं जाऊंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही सिखाया कि जो भी काम करते हो, काम करते समय, काम करते वक्त वो याद रहे जिससे आपको प्यार है, वो याद रहे जिससे आपको प्यार है, तो वर्क लाइफ ऑटोमेटिक बैलेंस बन जाता है। अब हमने लाइफ को अलग कर दिया, वर्क को अलग कर दिया, कर्म को अलग कर दिया, योग को अलग कर दिया। लोग बोलते हैं कर्म योगी, तो क्या करते हैं, सुबह उठे 5-10 मिनट योगा करा कुछ करा, पूजा पाठ करा, ये करा, हम 15-20 मिनट के लिए योगी और सारे दिन कर्म, तो गड़बड़ होगी। पहले आधा घंटा योग और फिर पूरे 23 घंटे 50 मिनट कर्म, फिर रात को वापस आए, फिर 5 मिनट के लिए दोबारा से याद आया अरे योग भी करना है, फिर योग किया। लेकिन उस काम करते समय में भी अगर हमारा योग लगा रहे, या योग का मतलब मजबूरी वाला योग नहीं, जो आंख बंद करके, जब भी मैंने कहा किसी को मेडिटेशन करें, अभी भी मैं कहूं आपको मेडिटेशन करें तो आप जो ऐसे बैठे ना एकदम ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे ऐसे, अब मैं योग कर रहा हूं, ये योग नहीं है। अभी 24 घंटे तो आप नहीं कर सकते ना ऐसे, आपको जिससे प्यार है उसको याद करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा है? ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा जैसे बैठ के याद आ रही है। तो एक बार परम शक्ति ने बड़ा अच्छा महावाक्य में उचारा, एक घर के बाहर नौकरानी भी झाड़ू मार रही है और एक घर की मालकिन भी झाड़ू लगाती है, दोनों के झाड़ू लगाने के तरीके से कोई गली में जा रहा हो तो उसे पता लग जाता है कौन मालकिन है कौन नौकरानी है। जो कर्म में डूब गया वो नौकर या नौकरानी है, और जो कर्म करते समय भी पता है कि मैं ऑनर हूं वो मालिक है। तो परम शक्ति ने समझाया कि यहां से अपने को सदा याद रहे आई एम द ऑनर इस बॉडी का और काम कर रहा हूं। तो आपके उससे ऑनर झलकना चाहिए, ऑनरशिप। ये चीज जब हम सीखना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करना शुरू हो जाएंगे तब आनंद आएगा। बैलेंस कब करते हैं, जब गिरने की नौबत आती है। अभी हम यहां से ये दोनों कुर्सियों के बीच में जगह है खाली, अगर हम कहें इसमें से निकल के जाना है तो बड़े प्यार से आप निकल जाओगे, ऐसा ही है ना, निकल जाओगे ना। लेकिन जितना ये 2 या 3 फुट का है, इतने हिस्से कोई अगर ऊंचा कर दिया जाए 10 फुट, इस ग्राउंड से 10 फुट ऊंचा कर दिया जाए, तब आप जब उस पर चलेंगे तो आपके दोनों हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएंगे ना, क्योंकि अब आपको गिरने का भय है। तो गिरने के भय से बचने के लिए अब आप बैलेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। अब ये 20 की जगह 40 फुट ऊंचा कर दिया जाए तो जिनको तो बैलेंस बनाना आ रहा वो चले जाएंगे, बाकी आधे में जाकर बैठ जाएंगे। सामने वाला बोलेगा आ जाओ, क्योंकि आपने नीचे देख लिया है ऊपर से नीचे गिरेंगे तो अब कहते हो अब आगे नहीं आया जाता, तो पीछे वाले कहते हैं अच्छा वापस ही आ जाओ, और पीछे मुड़ के देखता कहता पीछे भी नहीं जाया जा रहा, और नीचे वाले कहते हैं ऊपर से वैसे ही नीचे आ जा, कह रहा वो भी नहीं आया जाता, तो वही अटक जाते हैं। आज संसार की हालत कुछ ऐसी हो गई है, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं और वहीं बैठे हुए हैं। जैसे होता ना जब जाते जाते सिर्फ ऐसे ऐसे बैठ बैठ के आगे आगे बढ़ते हैं, वैसी हालत हो गई है नहीं? तो ऐसे समय में कोई वहीं से कोई इस चीज का एक्सपर्ट हो वो साथ आए, हाथ पकड़े, उठाए और साथ ले जाए और पार सफर करा दे तो पार हो जाएगा। तो वो पार कराने वाला आ गया है, पार करा रहा है, कितनों को पार करा दिया, कितनों को करा रहा है, कितनों को आपके द्वारा कराएगा पार होना है, यही जिंदगी का रस है। हर चीज का रस लेना सीख लें तो जीवन रस भरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रस भरी, नहीं तो नीरस सी जिंदगी है। हम जानते बहुत कुछ है, समझते भी बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से खालीपन है। हंसना भी खूब अच्छी तरह आता है पार्क में जाके गिनती से, लेकिन फिर भी खालीपन है। तो खालीपन कैसे भरे? प्यार हर चीज का इलाज है, प्यार। प्यार तो सबसे पहले अपने से ही प्यार कर लें। यदि आप अपने से ही प्यार नहीं करें और ये उम्मीद करें लोग आपको प्यार करें, तो हो सकता है। आप नोट करें, जब अपने अपने काम से परेशान हैं, अपने आप से परेशान हैं, और फिर उम्मीद करते हो दुनिया वाले आपकी तारीफ करें, जब आप ही अपनी कमियां निकालते हो, अपने काम की कमियां निकालते हो, तो लोग कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए, गली में एक छोटा सा कुत्ता है, आप जब जाते हैं आते जाते उसको रोज एक लात मार देते हैं, रोज एक लात मार देते हैं। एक हफ्ता हुआ, उसके बाद अपने रिश्तेदार को लेके आए, ये कुत्ता मेरा है, अभी बुलाती हूं, आजा आजा। वो आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हैं? उसे पता है आते ही एक पड़ेगी। तो कुत्ते को भी अकल है, छोटे से गली के कुत्ते को नहीं आए तो आपकी किस्मत को उससे ज्यादा अकल है, वो आपके पास क्यों आएगी जब रोज ही कोसते रहते हो, रोज ही कोसते रहते हो, सुबह से शाम तक कोसते रहते हो। तो उसे पुचकारना शुरू कर दो, आपकी नहीं है तब भी आपकी हो जाएगी। यहां जो भाग्यशाली नहीं थे जब भगवान के बने, तूने बोला गया कि मैं भाग्यशाली हूं, तो उन्होंने वो रटना नहीं, फील के साथ, फीलिंग के साथ बोलना शुरू करा, रियलाइज करना शुरू करा, तो वो भाग्यशाली बन गए, भाग्य उनकी ओर आ गया। आपका भी भाग्य यदि आपसे रूठा हुआ है तो मना लो, या कोई और मनाने आएगा, या इसके लिए भी कोई कोर्ट है जो आप दोनों के बीच समझौता करेगी कि भाई इधर आपका भाग्य बैठ गया, इधर आप बैठ गए, भाग्य ने शिकायत करी, मैं जब भी जाता हूं एक कोसता रहता, मैं नहीं जा रहा। वो बोले मैं तो ऐसा ही हूं, इसने आना मेरे घर तो आए, होता ना पति पत्नी का झगड़ा, नहीं तो आपको इसमें भी मीडिएशन चाहिए क्या? तो भाग्य आपके पास आने को तैयार बैठा। सुख लेना शुरू करें, खुशी में रहना शुरू करें। लोगों के चेहरे भी खुशियों के बजाय खुश्क हुए हुए हैं। सुबह से शाम तक मैंने देखा है जिसको खुश्क रहने की आदत है, यहां भी परेशानियां ले लेते हैं, यहां से भी परेशानियां ले लेते हैं, कहीं से भी। आप खाना खाने जा रहे हैं, किसी ने कहा भाई आप यहां नहीं खाएंगे, आप वहां जाइए, ले ली परेशानी, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहां भी ऐसा होता है, बैठे रहो, कुड़ते रहो, कुड़ते रहो, कुड़ते रहो, कुड़ते रहो। अभी भी छोटी छोटी चीजों को आप पकड़ना सीख रहे हैं तो फिर बड़े भाग्य को कैसे कब्जे में लेंगे। छोटी चीजों को जाने दें, छोटी चीजों को जाने दें। पर यह बात दूसरों को समझाने में बड़ी मजेदार है। किसी और को दिक्कत हो, जाने देना, छोड़ना, आज के बाद शीशे में खड़े होकर खुद को भी समझाया कर, जाने दे यार, जाने दे, जाने दे, बार बार अपने को कहा कर, जाने दे, जाने दे, जाने दे। और जाने दे में धीरे धीरे सारी चीजें चली जाएंगी जो आपके लिए दुखदाई नहीं है, दुखदाई है, और जो सुखदाई है वो आपके पास आने लग जाएंगे, वो आपके पास आने लग जाएंगे। तो आप जब काम कर रहे हैं, उस काम करते समय उसका आनंद ले रहे हैं, इसके लिए अपने जीवन को होम्योपैथी दवाई की तरह प्रयोग करें। इस राजयोग को होम्योपैथी दवाइयां मैंने देखा है दिन में 5-5 बार लेनी होती है, 4-4 गोलियां खाते रहते हैं काम के बीच में भी रोक के। तो परम शक्ति के साथ जो मेडिटेशन का अनुभव है, या जो आपने पॉइंट सीखे हैं, या जो यहां से जाने के बाद सेवा केंद्र पर अपनी बहनों से और आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो वो सीख कर दिन में 5-6 बार इसका अभ्यास करें। पर याद रखें, अगर उस अभ्यास में खुशी नहीं आ रही और रस नहीं आ रहा, तो वो अभ्यास आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में छोड़ देंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें मजा नहीं आ रहा। हमें जिस चीज में मजा नहीं आता वो हम चीज छोड़ देते हैं, रिश्ते तक छोड़ देते हैं, जिन रिश्तों में मजा आना बंद हो जाता है छोड़ देते हैं। कहते हैं अब इस दोस्त के साथ मजा नहीं आता, छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाता है, छोड़ दिया। जिस गाड़ी में चलाते समय मजा नहीं आ रहा उस गाड़ी को भी लोग छोड़ देते हैं। और एक समय आता है इस देह में रहने में भी मजा नहीं आता तो लोग बोलते हैं अब इसको छोड़ देना, या तो मजा लेना सीखिए। हर चीज में मजा लीजिए, और आपने देखा है जब कोई मजा लेके खा रहा हो, मजा लेकर गा रहा हो, मजा लेके नहा रहा हो, मजा लेके गुनगुना रहा हो और मजा लेके कमा रहा हो, उसका चेहरा अलग दिखता। हम सारी जिंदगी मजे को टालते रहे। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो खूब मजा लेता है, लेकिन हमने उसको टेंशन डाल दी, बेटे ले ले मजा, तेरे को अभी पता लगेगा जब तू स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाना शुरू हो गया, खूब खुश रहे, क्या तेरे को मजा आ रहा है, जब तेरे को बड़ा स्कूल मिलेगा ना छठी के बाद तब तेरे को पता लगेगा, और फिर हम मजा आगे ही रखते आए, आप भी मजा आगे रखते आए। जब कमाने की बारी नहीं आई थी, जब कॉलेज में पढ़ते थे स्कूल में पढ़ते थे तब कहते तब मजा आएगा जब खुद कमाएंगे। लो जी खुद भी कमाने लग गए, फिर बोला नहीं मजा तब आएगा जब शादी हो जाएगी। शादी भी हो गई, क्या नहीं नहीं मजा तब आएगा जब बच्चे हो जाए। लो जी बच्चे भी हो गए, नहीं नहीं मजा तब आएगा जब ये सेट हो जाए। लो जी सेट हो गए, मजा तब आएगा जब हम रिटायर हो जाए। लो जी रिटायर हो गए, अब तो लकड़ियों में ही मजा आएगा। मजा भी सोचता रहता है ये मेरे को लेके ही राजी नहीं है, पोस्टपोन ही करते जा रहे हैं। आप चेक करो मजा लिया कहां, आदत ही नहीं है मजा लेने की। हर बार पोस्टपोन करा। अब तो आपके बच्चे कोई कई चीजों में तो मैं उन्हें समझदार कहूंगा। हमारे यहां तो जब हम छोटे थे हमें तो कपड़े सिलवा दिए जाते थे, बर्तन भी घर में नए आते थे, कह रहे जब कोई खास विशेष होगा ना तब निकालेंगे, और वो बेचारे खास होने से पहले ही बर्तन छोटे, वो कपड़े छोटे हो जाते थे, तो मजा ले ही नहीं पाए। तो अभी ही मजा लेना सीख ले। अभी भी कुछ यहां बैठे हुए कह रहे हैं क्या मौसम है, जब माउंट आबू घूमने जाएंगे ना तो मजा लेंगे, उसको पोस्टपोन करे बैठे हुए हैं, यहां वहां और मजा आएगा। चार को और जो मजा ले रहे हैं ना उसको और टेंशन में डाल दिया, ये तो धुंध कुछ नहीं है ऊपर क्या मजा आता है, उसने अपना मजा उठा के साइड रख दिया। अब वो माउंट आबू घूमने गए तो उन्हें कहा अरे दार्जिलिंग तो इससे भी प्यारा है, ले ले उसने माउंट आबू वाले का मजा वहां रख दिया। सोच रहा अगली बार जब दार्जिलिंग जाएंगे ना तो मजा लेंगे, कब जाएंगे 2 साल 10 साल बाद, वो मजा पोस्टपोन किया हुआ है। मैं जब छोटा था जब 2 लड्डू मिलने थे तो मुझे 1 लड्डू मिलता था, हमारे और भाइयों को 2 लड्डू मिलने थे 1 मिलता था तो वो उठाकर फेंक देते थे। मैं पहले उसको लड्डू को खाता था उसके बाद रोता था कि दूसरा चाहिए। भाई कल को मात पिता डांटने के बाद चक्कर में पहला लड्डू ना छीलने, पहले वो खा लिया प्यार से, उसका तो मजा ले लिया, उसके बाद कहा अब दूसरा चाहिए भाई। और चूंकि पहला फेंक चुका था दूसरा, मैंने कहा तू ले, हमने वो भी उठाया खाया और मजा लिया। ये जिंदगी में हम सब भी ऐसे ही है, कुछ लोग जो मिला है उसको फेंक रहे हैं क्योंकि पूरा नहीं मिला, और कुछ बहुत मस्त लोग हैं जिन्होंने फेंका और उन्होंने कहा कमाल है यार, ये हमारे लिए ही रोका हुआ था तो मजा ले रहे हैं। नहीं, ये बैलेंस सीखना है, बैलेंस कहते किसे हैं? आप जब सांस ले रहे हैं, अभी जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपको पता है आप सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? आपको ये भी कॉन्शियस में नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूं या छोड़ रहा हूं, ये भी कॉन्शियस में नहीं है, अभी सांस ले रहे हैं नहीं। मान लो जब आपको आभास हो कि मैं सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं तो मतलब दिक्कत आनी शुरू हो गई है, और जब ज्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में लिटाता, आईसीयू में, और वेंटिलेटर पे डालता है। वो जो नेचुरल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना था, वो आपको वेंटिलेटर के द्वारा आर्टिफिशियल दी जा रही है, पंप देके जबरदस्ती लेना और फिर जबरदस्ती छोड़ना। उसके पैसे चार्ज हो रहे हैं रूम सहित, जो इतना नेचुरल स्टेज में आपको पता भी नहीं था, वो अब आर्टिफिशियल होने के बाद पेनफुल भी है, लेकिन आपको करना पड़ता है। अब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इसको कब उतारोगे, कह रहा जब ये थोड़ा रिकवर हो जाएगा, अपने आप थोड़ा हटाकर देखते हैं, अपने आप ले रहा है तो ले रहा है, नहीं तो फिर वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा है, ये खुशियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये तो सात गुण आत्मा के सातों, जो पहले लेसन में बताए आपको आज या कल में, और जो इसका दाता है परमात्मा, उसको गुणों का सागर जो आज सुबह बताया होगा, ये जब हम में नेचुरल थे तो हमें पता भी नहीं था कि हम खुशी में हैं और हम शांति में, हमें पता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये हमसे गायब हो गए और हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। अब हम खुशी के लिए वेंटिलेटर डाला हुआ है, जानकर खुश होते हैं, जानकर, जान के मतलब वो हा 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 हे हे हो करते हैं ना, आपको पता ना पार्क में जाके लोग हंसते हैं, हैं? लाफ्टर क्लब है, वो भी गिनती से, एक दो तीन, हा 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 करो ना, करो 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 करो, उसके बाद चुप, फिर थोड़ी देर बाद हा हा हा, फिर चुप। मतलब सुबह शाम जैसे कईयों का अस्थमा होता है ना, तो वो लेते हैं क्या बोलते हैं निबलाइजर, हैं स्प्रे, वो बेचारे सुबह ऐसे करते हैं, फिर थोड़े से नॉर्मल होते हैं। हम भी सुबह गए, थोड़ा सा हा हा करा और पूरा दिन मुंह ऐसे बना के घूमेंगे। घर वाले कहते क्या हुआ, हंसी नहीं आ रही, सुबह पार्क में हंसाई हूं, क्योंकि वेंटिलेटर पे है। अब पूरा दिन थोड़ा हंसना, मुंह बना के रहना, आर्टिफिशियल शांति भी आर्टिफिशियल है, शांति भी और प्यार भी आर्टिफिशियल है। क्या प्यार के वर्ड सीख लिए, नो नो फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, ये डे वो डे, ये डे बस वो सीख, सब कुछ आर्टिफिशियल होता चला गया। बहनों को सिस्टर्स डे में विश किया जा रहा है, मदर्स डे को मदर डे में ही मदर याद आ रही है, तो सारा वैसा होता गया। इसको नेचुरल बना ले, इसको नेचुरल बना ले। मैं आपको बताऊं, जिसका सच में किसी से प्यार होता है ना, उन्होंने जिंदगी में कभी, बहुत रेयरली शुरुआत में कभी किसी से कहा होगा आई लव यू, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, दोनों को पता है, दोनों को पता है प्यार है। जहां बार बार कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, इसका ना कहीं डाउट बैठा हुआ है, कहीं डाउट बैठा हुआ, बार बार कहना पड़ रहा है, नहीं तो वो जो वेंटिलेटर हटाएंगे और नेचुरल आपकी सांस आनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही जब ये वेंटिलेटर हटा देंगे, आपको नेचुरल खुशी लेनी आ जाएगी। अभी भी आप में से कई आकर बताते हैं कि जी आपके कहे अनुसार हमने पांच दिन तो ऐसा करा, अच्छा भी लगा, लेकिन ये लगातार कंटिन्यू नहीं हो पाता, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। जिंदगी ऐसी है, जैसे मैं अभी कमर झुका के बैठा हूं, किसने कहा सीधे होकर बैठे तो मैं सीधा हो गया, लेकिन अब कब तक सीधा रहूंगा, धीरे धीरे फिर वैसे ही आऊंगा, फिर कोई आता सीधे होके बैठो, फिर सीधे हो गए, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे, तो मेरी नेचुरल पोजीशन ये है, ये नहीं है, ये है, तो ये आज नहीं तो कल या 10 दिन बाद 20 दिन बाद 30 दिन बाद ऐसे आना ही है मुझे। तो कईयों की नेचुरल पोजीशन मुंह लटकाने की है, वो पूरा तरह से मुंह लटका होता है, और वो जिस दिन मुस्कुराते हैं तो घर वालों को भी दिक्कत होने लग जाती है, आज मुस्कुरा रहा है कुछ गड़बड़ है। सच में ऑफिस में भी अगर बॉस आज मुस्कुरा रहा है तो कहे आज भाई साहब 2 घंटे फालतू लगने वाले हैं। एक बार वो किसी से प्यार से पुचकार दे यार शाबाश, क्या 3 घंटे गए, मतलब लोगों को इतना डर लगता है। और जिसकी नेचुरल पोजीशन खुशी की है, आनंद की है, तो सदा के लिए खुश रहना सीखिए ना, सदा के लिए आनंद लेना सीखिए ना। तो बुरा क्यों मानते हैं, बुरा क्यों मानते हैं, क्योंकि बुरा अच्छा लगता है, बुरा अच्छा लगता है ना। अरे जो अच्छा नहीं लगता उसको बार बार क्यों याद करते हैं लोग? पागल है क्या लोग याद करें? हर बुरी चीज को बार बार याद करते हैं और अच्छी चीज को दो बार याद करने के बाद कहते हैं बहुत हो गया ना, अब नया चाहिए कुछ। तो बुरी चीजों को बार बार मन में लाके याद करते हैं। तो जब आप काम पर आते हैं और काम से घर जाते हैं तो थके हुए जाते हैं, एग्जॉस्ट होके जाते हैं। लेकिन अगर काम का आनंद ले लें तो घर जाते हुए थकान नहीं होगी, घर जाते हुए थकान नहीं होगी। और कितनी हैरानी वाली बात है, आप में से जो वर्किंग है घर में कितनी देर रहते हैं? सुबह उठे, उठते ही पहले अपने नहाने धोने में लगे, फिर ऑफिस आए और ऑफिस के बाद घर आए, घर आते ही खाना वाना खाया, या वो सुबह और शाम मिला के मुश्किल से 2 या 3 या 4 घंटे जागृत अवस्था वाले घर वालों के साथ रहते हैं। कई तो 12-12, 14-14 घंटे कंपनी में या ऑफिस में या बाहर रहते हैं, कईयों के टूर है, लेकिन वो 14 घंटे वहां रहते भी याद क्या आ रहे हैं जिनके साथ 2 घंटे रहते हैं? वही तो याद आ रहे हैं। उन 2 घंटे वालों की याद के सहारे वो 14 घंटे कट रहे हैं। अगर कोई सीनियर डांट भी देता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं, बच्चे पालने हैं। बच्चे पालने मतलब जिनके लिए आए हैं ना, उनके प्यार के लिए मैं गाली भी खा लूं, कोई बात नहीं। तो जिनके साथ केवल 2 घंटे रह रहे हैं उनके लिए 14 घंटे दूर बैठे हुए भी कई बार जो दिल को पसंद नहीं वो भी सह लेते हैं, तो इसका मतलब क्वालिटी टाइम मैटर करता है क्वांटिटी टाइम के बजाय। तो ये घर की बहनें भी समझें कि घर में अगर कोई कहता है कि भाई हमारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताते, चाहे कितना भी समय बिताए, इफ दैट पर्टिकुलर टाइम इज क्वालिटेटिव तो अच्छा है। और हैरानी वाली बात है, जब भी समय जहां देना हो सीमा से ज्यादा हो जाता है तो बुरा लगने लग जाता है। जिनको आप जिनसे परेशान है कि समय नहीं देते, अगर वो 4 महीने घर बैठ जाए तब आप ये नोट करते हैं कब जाएगा, नहीं तो हर जगह उतना ही समय हो, उतना ही समय। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूं, ये आपने शायद 2 दिन में की होगी, तो मैं दोबारा से कराता हूं आपकी पर्सनल अटेंशन के लिए कि कितना आप यहां है बैठे हुए हैं। करेंगे है? ठीक है, तो खड़े हो जाएं, थोड़े बाहर इस बीच में भी आ जाएं, जो क्योंकि हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे थोड़े खुले हो जाएं। और अगर ये हमें स्टैंड माइक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो चलेगा। ये बड़ा अच्छा है, मैं कहूंगा ऐसा तो आपने मुझे फॉलो करना है। हाँ मैं ले लूंगा वो, हाँ माइक तो आ जाएगा लेकिन जान उसमें से तो अंदर वाले ही देंगे ना। अच्छा अच्छा, तो आवाज है, तो मैं जब कहूंगा ऐसा तो आपने मुझे फॉलो करना है। और जब मैं कहूंगा कैसा तो आपने मुझे फॉलो नहीं करना, ये जिंदगी का रूल बना लेगा। कौन सी चीज किसकी फॉलो करनी है और कौन सी चीज किसकी फॉलो नहीं करनी, अगर आपने यह बिठा लिया तो आप खुश हो जाएंगे। कोई आपकी तारीफ कर रहा है बहुत अच्छे हो तो हम सोचते हैं मस्का लगा रहा है, और कोई बोले तू बिल्कुल बकवास है तो उसको नहीं कहते इसका दिमाग खराब है ऐसे ही बोलता, उसको सीरियसली ले लेंगे और सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने मन में बिठा देना कि मुझे कौन सी चीज जिंदगी में लानी और कौन सी नहीं लानी, यहां से कंट्रोल है कि नहीं है। तो जब मैं कहूंगा ऐसा, मैं जैसा करता जाऊंगा वैसे कर, जब मैं कहूंगा कैसा तो आपने मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करना, बिल्कुल फॉलो नहीं करना। शुरू करें कैसा, देखो मैंने कहा था कैसे में फॉलो ही नहीं करना, अब समझ आ गया, अच्छी तरह समझ आ गया। तो अब ऐसा करेंगे जो इसमें फेल तो नहीं कहेंगे, जो ऐसा कैसे में जो नहीं कर पाए वो ईमानदारी से खुद बैठते जाना, खुद बैठ जाना, मतलब आपको कोई नहीं अभी नहीं अगली बार, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अगली बार से। ये पहला तो सिर्फ ट्रेलर था, ट्रेलर क्या ट्रायल था। शुरू करें, चलो अब देखो आप कितने अटेंटिव होके सुन देखे ऐसे करके नहीं अटेंशन, क्योंकि आपको पता है ना कि अब यहां बुद्धि चलानी है। शुरू करते जाएंगे फटाफट। ऐसा ऐसा कैसा हाँ ठीक है बैठ जाएं, जो जो गड़बड़ हुए मुझे ना कहना पड़े ना उनकी तरफ देखना पड़े। ठीक है शुरू करें। कैसा ऐसा ऐसा कैसा, अब तेजी से करेंगे, स्पीड थोड़ी सी दिखाएंगे ताकि थोड़े बड़ा आनंद आएगा। जो जो बैठ गए हैं वो मुड़कर पीछे वालों को देखो कितने ऐसे करके बैठे हैं जैसे अभी देखो ऐसे। हाँ जी शुरू कर रहे, अब तेजी तेजी से फटाफट करते जाएंगे, अब स्पीड नहीं करेंगे। कैसा ठीक है ठीक है चलो करते। ऐसा 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 कैसा ठीक चलो। ऐसा कैसा ठीक है। ऐसा कैसा ठीक है। जो खड़े हैं इनके लिए तालियां बजा दे, बैठे वाले बैठे। आपने देखा कि ये जिंदगी का गेम है। जो सही नहीं कर रहा वो उसके बाद भी मजा ले रहा है, वो उसने ऐसा करा और ऐसे ऐसे कर रहा है और देख रहा है गलत है कि नहीं है। और जो सही कर रहे हैं उनको ज्यादा टेंशन है, ये बैठ नहीं रहा। और लोग लड़ रहे हैं, तू बैठ जा, वो उसे देख रहा है क्यों। सही वाले को टेंशन है, गलत वाले को कोई टेंशन नहीं है। और जैसे ही गलत वाले बैठ गए अब उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा करते हैं। आउट होने वाले आउट ना होने वाले को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं खेलना चाहिए। कि तू कैसे सिखा रहा है, कह देख मैं आउट होके बैठा। तो ये जिंदगी का असूल है, आपको वही शिक्षा देंगे जो सफल नहीं हुए हैं। जिनके खुद के घर नहीं बसे वो घर बसाने के ऊपर लेक्चर देते हैं। समझ आ रही बात। सिर्फ 12 प्लेयर खेलते हैं, 12 करोड़ लोग देखते हैं और उसके बाद बाहर बैठ के बोलते हैं सचिन को ऐसा नहीं ऐसे चलना चाहिए था। कमाल है जिंदगी। तो आप भी चेक करें, आपको हर एक को टोकने की आदत है तो आप आउट वाली गिनती में बैठे हुए हैं। आपको यही फुर्सत नहीं दूसरे को क्या देखना और क्या करना। तो आप प्लेयर हैं और जिंदगी की पहला आध्यात्मिकता का लेसन आप जी रहे हैं। आई द सोल एम प्लेयर प्लेइंग माई पार्ट। मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं। प्ले करने वाला दूसरों को नहीं देखता, खाली बैठा हुआ दूसरों को देखता है। अगर आपकी सारी जिंदगी दूसरों को देखने में लग रही है तो आप कर्म करते भी दुखी है, और आप खुद ही कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं तो उसका सुख लेना है। मैंने जीवन को प्रेम से जोड़ा। मैं ब्रह्मा कुमारी में तब आया जब 20-22 साल का था या 23 साल का होगा। तो भगवान को, भगवान से प्रेम का नाता जोड़ा, प्रियतम का, दोस्त का। तो मैं अपने को हमेशा क्वेश्चन किया करता था। मैं ये अक्सर क्लास में बताता हूं, आपके लाइफ का जो बैलेंस है, जहां आपके आगे लक्ष्य क्लियर है ना उसके आगे सब छोटा लगता है, सब छोटा लगता है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आपको सब चीजों को देखने की मिल, आप सैर करने जा रहे हैं आपको आसपास सारा पता लग जाता है कहां का मकान बन गए हैं, और आप रोज ऑफिस के लिए भाग रहे हैं उठा के बैग, आपको ये भी नहीं पता साथ में क्या हो रहा है क्योंकि आपका सीधा अटेंशन कहां है पकड़ना। अगर आपको इधर उधर देखने में आ रही हैं चीजें तो आप खाली हैं और वैसे है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर अटेंशन डाल देती है। हमारे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, कहते किसी से प्यार हुआ है पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मैंने उनसे पूछा कि ये प्यार नहीं वासना है, प्यार हमेशा सपोर्टिव होता है। आपको किसी का प्यार मिला, किसी से प्यार हुआ और उस प्यार के कारण आप अपने लक्ष्य में दुगनी गति से चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये सोचना ये प्यार है, अदरवाइज ये डिस्ट्रैक्शन है, आपको अपने लक्ष्य से हटा रही है। अगर आप ब्रह्मा कुमारी में आए, आपके जीवन में उथल पथल तनाव आ गया ज्यादा, तो आपने इस ज्ञान को ढंग से अप्लाई नहीं किया। और अगर अंदर घुसते ही ये अपना रंग दिखाने लग गया, सुख शांति आनंद प्रेम बरसाने लग गया, तो समझ लेना अब दवाई काम कर रही है, असर आ रहा है। तो असर आना चाहिए, असर आना चाहिए। मेरे पास दो भाई बहनों की वो आई थी कि एक मुझे कहा कि मुझे अपना अनुभव सुनाना है, मैं कैसे ब्रह्मा कुमारीज में आया, और थोड़ा सा मेडिटेशन कराना है। क्योंकि समय कम है तो दोनों में से एक कर सकते हैं, तो क्या चाहेंगे हैं? बताएं हैं? अच्छा चलो दोनों छोटे छोटे करके करा दें, देखो दोनों की राय एक मान लेते हैं। तो पहले अनुभव सुना देते हैं फिर मेडिटेशन करा देते हैं। जिस तरह लोग अपनी प्रेम कहानियां सुनाते हैं, मैं भी आपको अपनी प्रेम कहानी सुना रहा हूं। जीवन में बहुत कम किस्मत वाले हैं जिनकी प्रेम की चर्चाएं होती हैं, बाकी दुनिया तो लोगों के प्रेम कहानी सुना के चटकारे लेती है। चाहे वो देवी देवताओं की प्रेम कहानी, श्री कृष्ण और श्री राधा की प्रेम कहानी, उसको आध्यात्मिकता का दर्जा दे दी, धर्म का दर्जा दे दिया जाता है, या गली मोहल्ले में किसी और की प्रेम कहानी के चर्चे सुन, तुम्हें पता है शर्मा जी का, तो प्रेम कहानी। तो मेरी एक किस्मत है कि मेरी खुद की प्रेम कहानी बनी। मैं आठवीं में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। घर आया तो घर में पिताजी की बॉडी पड़ी थी, 13 साल का था, गरीब थे, पिताजी का देहांत हुआ तो गरीबी से भी नीचे आ गए। हम माइग्रेंट हैं, पाकिस्तान से आए हुए। हमारे को किस्सों में सुनाया जाता था कि हम बहुत 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 रिच थे वहां, लेकिन किस्सों में ही सुना, रिचनेस देखी नहीं परिवार में। हाँ उनके संस्कारों में दिखता था कि रिचनेस है, चाहे धन नहीं था। तो जब पिता का देहांत हुआ तो पिता की जो कमी थी वो खलकने लगी। तो किसी का बच्चा उसकी गोदी में बैठा होता था तो मेरा मन करता था इसका भी पिता मर जाए उस बालपन में, कि भाई वो जब उसे प्यार से उठाता, गोदी में लगाता तो मेरे को बड़ा महसूस होता। हालांकि बहुत पत्थर दिल का था, पिता की डेथ पे भी रोया नहीं, लेकिन वो इमोशनल इम्बैलेंस के हिसाब से समझे तो वो इमोशन कहीं और ले गया, तो गुस्सा आना शुरू हुआ, झगड़े होने शुरू हुए, तो थोड़ा बिगड़े बच्चों में नाम आना शुरू हो गया। घर में अगर चूहा आ जाता था पिंजरे में तो उसे रखकर उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के हल्की सी आग लगा के उसे देखता रहता था। मजा आता था दूसरों को दुख देने में और तंग करने। बड़े हुए स्कूल कॉलेज में जब झगड़े हुए तो झगड़े होते थे तो किसी को मारता था तो मारता ही चला जाता था। लोग आके बचाते थे कि अब मार ही देगा क्या, इसे आ जा साइड हो जा साइड हो जा, हर एक से लड़ना झगड़ना। मुझे ध्यान नहीं, युवावस्था में मैंने कभी ढंग से नहाया हूं, कभी हाथ ऐसे करके नहाता था, कभी टांग ऐसे, क्योंकि टूटी फूटी रहती थी। हॉकी खेला नहीं लेकिन यहां बड़ी खाई और मारी, मेरा झगड़े फसाद। ऐसे में मेरे एक हमारी गली में कोई एक व्यक्ति रहते थे, हालांकि ये बात यहां रिकॉर्डिंग में नहीं बतानी चाहिए लेकिन परिवार है तो बता रहे हैं, हमारा किसी से झगड़ा हुआ कॉलेज स्कूल के गली के लड़कों का किसी सामने वालों से किसी और पार्टी से, तो झगड़ा हुआ तो उनकी पिटाई हो गई। जब उनकी पिटाई हुई तो उसके वो टाके वाके आ गए और हम घर से भाग गए। घर से भागे हुए थे तो जहां रुके हुए थे वहां एक भाई रोज सुबह जाता था सफेद कपड़े डालकर और भागता जाता था 6:45। मैंने उनसे पूछा, ये रोज कबूतर जैसे कपड़े डालकर सुबह सुबह कहां जाते हो? कहा, योगा सीखने जाता हूं। मैंने कहा, मुझे भी सीखना है, मेरे थोड़ा बैकेक रहती थी तो मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने कहा, कल सुबह चलेंगे। तो कहा, 6:30 तैयार हो जाना, क्योंकि अक्सर मैं 10 बजे सो के उठता था, वो तो कहीं और जगह रुका हुआ था, तो 6:07 वाली बात थी। तो शाम तक आते आते मेरे को लगा मैं मना कर दूं, भाई 10 बजे नहीं है, तो वो सुबह 6 बजे उठाने आ गए और कहा, संजू नहा ले। मेरे लिए बड़ी अजीब सी चीज थी, एक सुबह उठना और एक रोज नहाना। तो उन्होंने कहा नहा ले। इससे पहले मैं कोई बहाना लगाता, मेरी तबीयत खराब है, ये खराब है, तो वो चले गए। उसके बाद नींद नहीं आई मुझे, मैं नहा लिया। मैंने उनको कहा, मेरा आज दिल नहीं है तबीयत खराब। कह रहा, अच्छा जाके दीदी को मना कर देना, जो बहन होगी ना हमारी वहां, तो उसको मना कर देना। मैं जब वहां गया, सेंटर छोटा सा था, हरे पर्दे लगे हुए थे और ये सफेद साड़ी में बहन बैठी, तो मुझे लगा ये डॉक्टर है। आज भी हॉस्पिटल में ये सफेद साड़ी डाल के बहने घूमती है तो आधे से ज्यादा पेशेंट इन्हीं को पकड़ के दवाइयां दिखाने लग जाते हैं, तो डॉक्टर जैसी दिखती है। और जिसे बाबा का कमरा मेडिटेशन रूम कहते हैं, उसके बाहर हरा पर्दा लगा था, मुझे लगा यहां लिटा के मेरा चेकअप होगा। अब मैं जब बैठा तो उन्होंने एक बुक निकाली और कहा, आत्मा, अच्छा उस भाई ने अंदर घुसते ही बोला, एक आत्मा आई है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई आत्मा आ रही होगी। मुझे बाद में पता लगा ये मुझे ही आत्मा कहते थे। हम तो यही समझते थे जब कोई मर जाता है तभी उसकी आत्मा का कोई बात होती थी, जीते जी तो आत्मा की कोई बात ही नहीं होती थी। अब वो जो बैठ के उन्होंने कहा तुम आत्मा हो, कुछ ऐसा समझाने लगे, तो मैंने कहा भाई ये तो गलत जगह फंस गया था। मैंने कहा, देखो जी मैडम, मैं नास्तिक आदमी हूं, पहले बहुत पूजा पाठ करता था, मेरे पिताजी को मैं भगवद गीता सुनाया करता था पढ़कर, वो मेरे से पढ़वाया करता, धीरे धीरे जो परिस्थितियां आई तो अब मैं उठा, कहा जी मैं नास्तिक आदमी हूं, ये सब बेकार की चीजें हैं, आप सबने पैसा कमाने का ही धंधे खोले हुए हैं और आज अमेरिका कहां है, और हम जो भगवान को पूज रहे हैं और देवी देवताओं को मान रहे हैं, आज सबसे ज्यादा गरीब ये देश है, तो ये आप जैसे लोगों ने ही हमारे देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और खूब सुनाया जो मेरे दिल में था। पर वो बहन बस ऐसे ही थी, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुरा, मुझे लगा आज ऐसा सुनाऊंगा उस भाई को जरूर बोलेगी किसको ले आया है। सारा सुनाने के बाद बोला, कल आओगे आप? मैंने कहा, बोला तो है नहीं आऊंगा। कह रही, अच्छा कल 8 बजे आ जाना। कमाल है, घर आ गया, रात को नींद नहीं आई, करवट लूं इधर लूं तो उस बहन का हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत हंसते चेहरे देखे लेकिन ऐसा हंसी जो दिल को छू जाए वो नहीं दिखी। सुबह उठकर तैयार भी हो गया, आया, मैंने कहा 2 दिन में इनको बता दूंगा, इनको कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी बात, जिसको कुछ नहीं पता ना उसी को ये धोखा होता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये जीवन का सत्य है, जब हमें कुछ नहीं पता था तब हम समझते थे हमें सब कुछ पता है, और जब सब कुछ पता लग गया अभी भी लगता है अभी बहुत कुछ बचना पाना बाकी है। मैं आया, उन्होंने बताया आत्मा है ये परमात्मा है, धीरे धीरे बताने लग गए, पता ही नहीं लगा अंदर कैसे ओवरहॉलिंग होने लग गई, अंदर पार्ट्स खुलने लगे, धुलाई होने लग गई। जो 7 दिन का कोर्स था वो 23 दिन चला, पूरे 23 थे। 23 दिन में इतने प्रश्न, उन्होंने कहा ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, तो मैं जाके गुरुद्वारे में जाके उन ग्रंथी से मिलता था, मौलवी से मिलता, पंडित से मिलता, कह रहे हाँ ऐसा तो है। मैंने कहा फिर आप? तो बोले हम तो पापी हैं इतना। मैंने कहा फिर गाया जाता था, ऐसे कई चीजें मिलती गई। तो 23 दिन का कोर्स खत्म हुआ, प्योर नॉन वेजिटेरियन था, घर में मुर्गे पाले हुए थे, पंजाब का रहने वाला हूं, खुद ही बनाता था और खुद ही काटता था। अब जब वहां आया और थोड़ी आया, बोला शांति से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं 2 दिन बोलता रहा मैं आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। मैं बस स्टैंड पे बैठा, दोपहर का समय 1 बजे, लड़कियों की बच्चियों की छुट्टियां हो रही थी। तो कोई व्यक्ति थे जिन्होंने थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ था और वो आए और किसी से छेड़खानी करने लगे। मैं उसको देखे जा रहा हूं और बोल रहा हूं आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। एकदम मन ने कहा ये बाद में करेंगे, पहले पीसफुल। खड़ा हुआ, उसका जो करना था करा, वो पूरा लेट गया। मैंने कहा उतर गई? कह रहा हां। मैंने कहा तूने मेरी पीस उतार दी। वापस आया, दीदी को बोला दीदी मुझे तो ज्ञान सुनाना गधे को नहलाने वाली बात है, आज फिर गुस्सा करा और आज फिर मार के आया हूं किसी। तो दीदी का उत्तर देखिए कि आप आधी लड़ाई जीत गए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता आपको झगड़ा करने के बाद रियलाइज तो हो रहा है कि गलत किया। ये मेरे जीवन का पहला चेंज था जब हमें सही मायने में मोटिवेशन मिला। नहीं तो घर में इधर उधर यही कहा जाता रहा इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे को तो लोग बोलते रहे रब भी रखा है। ए नहीं कुछ सुधरू, कहते इसके कुछ नहीं है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो वो पहला जो मेरे को मोटिवेशन मिला कि तुम आधी लड़ाई जीत गए हो, उस नजरिए से मैंने देखा तो इतना अच्छा लगा। 3 दिन बाद मैं ऐसे ही बस में जा रहा था तो जब भी कोई मुझे घूर के देखता था तो एकदम मेरा हाथ बाद में चलता था, मुंह बाद में चलता था। तो मैं ऐसे ही खड़ा तो किसी का पैर मेरे पैर पे पड़ा और एकदम मेरे अंदर से वो राक्षस जागा और मैंने ऐसे देखा उसे। इस बार आगे वाला भी मेरे जैसा ही था। मैं सोचता इससे पहले उसने एक मारा कैच के थप्पड़ मुझे, मैंने थप्पड़ पड़ा और मैंने कहा भाई ये तो बैटिंग पहले से ही आ गई है। तब जैसे ही वो हाथ ऐसे मुट्ठी बनने लगा तब याद आया पीसफुल सोल है तू। मैंने मन में कहा आई एम ए पीसफुल सोल। तो मुट्ठी थोड़ी ढीली हुई, ईगो भी बहुत था कि पूरी बस देख रही है। बस रुकवाई, अगले स्टैंड पे जो रुकी तो उतर के नीचे आ गया। लेकिन वो जिंदगी का दूसरा दिन था रियलाइजेशन का। पीट के आते थे और चैन नहीं आता था, आज पिट के आया और जीत की महसूसता हो रही थी। क्या तूने अपने पे जीत पाई कि तू आज अपने हाथ को रोक सका, नहीं तो पूरी जिंदगी दूसरों को रोकने में लगे रहते थे। ये जीत पाई कि आज तूने अपने को रोका है। जब अपने को रोकना सीख लिया तो तू विजयी हो ही जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पुलिस की जॉब के लिए पहले भरे हुए थे नौकरी के लिए, नौकरी लगी। जब इसके लिए फिजिकल के लिए गए तो जब फिजिकल में जब 4 चक्कर लगाते हैं दौड़ के, उस दिन मेरे को दिक्कत थी तो मैं 1 चक्कर लगा के बाहर आ गया, घर आ गया। मुझे लगा 1 चक्कर लगा के बाहर आ गया तो जो ट्रेनर थे उन्होंने बोला ग्राउंड सूंघने आया है क्या? मैंने कहा हाँ। अगले दिन सुबह आया, यू हैव बीन क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट और आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मैं देखूं मैं तो आ गया हूं आधे में। और जब अगले दिन मेडिकल टेस्ट के लिए गया, अगले दिन 3 दिन बाद या 4 दिन बाद था, तो वहां जो लड़के खड़े थे वो ये कह रहे थे, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। तो हुआ कैसे कि जब भी जो आउट होता था उसके बाहर निकल जाता था, उसका नाम लिखा जाता था। मैं जब अपने ग्रुप में पहले ही चक्कर में बाहर आ गया तो उस ट्रेनर ने सोचा अभी क्या लिखना है, बाद में लिखूंगा। तो मेरे जो चक्कर में 30 या 35 लड़के दौड़ रहे थे वो सारे क्वालिफाई हो गए और उसने लिख दिया आल क्वालिफाइड। आल में आपा की भी बारी आ गई तो सारे कहने लगे तेरे को भगवान चाहता है। मुझे लगा ये भगवान भगवान कहके मेरे को फिर बलि चढ़ाएंगे, मैंने नहीं जाना। इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में भी ऐसे मस्ती से किया, लोगों ने सोचा बहुत धन है इसके पास, मतलब नौकरी की चिंता ही नहीं है। और हर प्रश्न का मजाकिया उत्तर दिया तब भी सिलेक्ट हो गया। लोग कहते हैं पैसा ये वैसा कुछ ऐसा ऐसा वैसा कैसा कुछ नहीं था। नौकरी में जब ट्रेनिंग के लिए गया तो अब मैंने मन में सोचा बाबा काठ की आंडी एक बार तो चढ़ गई, अब तो पूरे 2 साल का इंक्लूडिंग कमांडो भी करना है, अब कैसे करेंगे। और ऊपर वाले ने ऐसी ट्रेनिंग कराई जिस दिन कमर दर्द उठा उसी दिन कोई VIP आता था और हमारी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाती थी, उस दिन की दौड़ कैंसिल हो जाती थी। 2 साल उसने ऐसा दौड़वाया ऐसा करवाया। थाने में गए एक बार, मेरे नाम से कोई पैसे लेकर आ गया, और उसने पूरी ब्रीफिंग में SHO को बोला, मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था, कि ये संजीव ऐसा ही संजीव पैसे लेकर आया 5,000। तो SHO ने उसे देखा और उसे थप्पड़ मारा खींच के, तेरे को पता है ये कौन है? तो उन्होंने बोला आप तो स्टाफ की साइड लेंगे। कह रहा ना, ये मेरे पूरे थाने का स्वामी जी है, मेरे को अभी भी सारे बैचमेट जो मेरे जानते हैं पुलिस में स्वामी जी कहते हैं। तो पता लगा कि मैं एक कांस्टेबल था, मुझे वो मोटरसाइकिल पे घुमाने ले, जैसे एरिया में घुमाने ले जाते हैं, तो मुझे बोला साहब बाहर बैठो मैं अभी आया। तो अंदर गया, SHO मुझे दिखा रहा बता रहा था कि वो बाहर से लेकर आएगा, ये देखो साहब मैं अभी आ रहा हूं। तो अंदर बोलता है साहब बड़े ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो लेकर आते। तो मैंने एक चीज सीखी, बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था, यू प्रोटेक्ट योर इमेज देन इमेज विल प्रोटेक्ट यू। अपनी इमेज को आप प्रोटेक्ट करो और एक समय आएगा आपकी इमेज आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो वो क्षण था, अगर और कोई होता तो किसी की शिकायत पे मेरे खिलाफ केस भी रजिस्टर हो सकता था। लोग समझते हैं ये हो सकता है पैसा ले लिया हो, लेकिन मेरी एक इमेज ऐसी थी, आप अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर लें और एक दिन ऐसा आएगा इमेज आपको हर जगह से निकाल के ले जाएगी। इमेज आई एम एज, जो मैं एजेस से लंबे समय से मैं हूं वही मेरी इमेज है। तो मेरी जिंदगी थी, मैंने लोगों को सिगरेट पीना शराब पीना ड्रंकर तो नहीं था लेकिन शौकिया जो पीते थे खाते थे वो सिखाया था। जब मैं यहां आया तो मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं 1,000 लोगों को कम से कम नशा छुड़ाऊंगा या ऐसी अच्छी जगह पे लाऊंगा। पहली बार जब मैं अपने दोस्तों को लेके आने लगा सेंटर पे, तो दोस्तों को जब मैंने कहा चलो, करे कहां चलना, किसको मारना, क्या तोड़ना है, मैंने कहा नहीं नहीं करे आसन तोड़ना है, मैंने कहा नहीं नहीं वहां एक क्लास है शांति के लिए। तो वो मेरे को फटी आंखों से देखते थे, बोले तेरे को कुछ हो गया, तेरे में कोई शांत भूत प्रवेश कर गया है। ऐसा लोग कहते थे कि तू अब कई बातों में उत्तर नहीं देता। और वो दोस्त स्पेशल कई मेरे आए आश्रम में, ये कहने आए कि हम वो देखना चाहते हैं कि ये पत्थर कैसे चेंज हो गया। मैं नौकरी लगने से पहले पावर और पैसे का भूखा था क्योंकि गरीबी बहुत देखी। जब हमारे रिश्तेदार हमें पैसा पुराने कपड़े दे जाते थे तो वो काटते बहुत थे मुझे, और जब सर पे हाथ रख के ऐसे कहते थे कि ये बेचारा, तो वो चुभता था। और जिस क्षण मैं सेंटर पे आया, एक महीना हुआ होगा, मैं परमात्मा की याद में बैठा और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वो ज्योति बिंदु, ब्रह्मा बाबा की फोटो देखी है ना आप सबने जगह जगह, रोशनी के शरीर में आलती पालती मार के बैठा हुआ है परम शक्ति उस ब्रह्मा के तन में। मेरे लौकिक पिताजी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उसे बुलाया, उसे एक जांग पर बिठाया, दूसरी जांग पर मुझे बिठाया और उसे बोला अब से ये मेरा है, तो निश्चित होकर जहां की तेरी यात्रा थी तू कर। और मुझे भी बता दिया कि तेरा पिता अब से मैं हूं। वो दिन था और आज का दिन मुझे अपना पिता कमी के रूप में कभी भी याद नहीं आया, उसने वो जगह भर ली। तो ये परम शक्ति पानी की तरह है, जो भी आपके जीवन में खालीपन है, जो भी आपके जीवन में खाली रिश्ता है, अलाओ हिम, वो खाली जगह सारी भर देगा और वहां आके खड़ा हो जाएगा। वो पति का भी रोल प्ले कर सकता है, पिता का भी रोल प्ले कर सकता है, नौकर का भी रोल प्ले कर सकता है और बच्चे का भी रोल प्ले कर सकता है। एक बार रिश्ता जोड़ के तो देखिए, एक बार रिश्ता जोड़ के तो देखिए। लोग उससे अपने रिश्तों की सलामती चाहते हैं और मैं कहता हूं जिसने उसके साथ रिश्ता जोड़ दिया तो उसका तो सब कुछ सलामत है, उसका तो सब कुछ सलामत है। तो ये मेरे जीवन का था। लास्ट के 3 लाइन में अनुभव खत्म करूंगा। मैंने परमात्मा को प्रेमिका के रूप में याद करा। मैं जब मेट्रो में जाता था तो लड़के और लड़कियां जिनको आपस में प्रेम है वो ऐसे डंडा पकड़ के खड़े होते थे और एक दूसरे से बात करते थे। जब भी किसी को किसी से प्रेम है तो वो बड़ी हल्की आवाज में प्यार में बात करते हैं, और जब प्रेम नहीं होता तो बहुत तेज आवाजें आती हैं। आपका अपने रिश्तों से अगर तेज आवाज में बात करते हैं तो मतलब सिग्नल कम मिलते हैं, और जहां सिग्नल मिल जाते हैं फुसफुसाहट में सब कुछ समझ आ जाता है। ऐसे करके बैठे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, कोई बीच में से निकल जाए, साइड से निकल जाए, तो दोनों में से लोग ऐसे हो जाते हैं लेकिन आई कांटेक्ट नहीं छोड़ते, इतना प्यार है। शोर मच रहा है तब भी एक दूसरे को देखेंगे, और उनकी बातें सुनो, कोई भी कोई भी काम की बात नहीं है, और क्या हाल है, क्या बनाया, कब नहाए, क्या हुआ। मैंने कहा यही तो राजयोग है। मैंने भी आके बाबा से ऐसी ही बातें करी, यू आर माई बिलावड। मैं जब नया जूता डाल के आता था तो बाबा के कमरे में जाके जूता उठा के दिखाता हूं, देख नया लाया हूं, नया लाया हूं। मेरे को ऐसा सुनाऊं तो रात हो जाए, खालसा कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था, नंबर कम थे, और जब बाबा का बना उसी कॉलेज में क्लास कराने गया, दोनों तरफ टीचर फूलों की वर्षा कर रहे थे और मैं उसके बीच में से निकल रहा था, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा बाबा, और वो ऐसा लग रहा था मेरा प्रेमी कह रहा था, देख जहां जहां से तुझे धक्के मिले हैं वहां तेरे आगे ना सर झुकवाऊं तो मुझे कहना। और उसने वो सब दिलवाया जिस जिस चीज की मुझे आस थी। मेरे को अपने घर की बहुत आस थी कि घर नहीं था हमारा, उसने 8500 सेवा केंद्र के रूप में मुझे घर दिए, 130 देशों में मेरा घर दिया। मैं आज गर्व से कहता हूं टाटा बिड़ला भी मेरे आगे कुछ नहीं है। किसी का इतना धन नहीं है, किसी का इतना बड़ा परिवार नहीं है, तो मैंने क्या पाया। अगर सीने में लिखा होता तो चीर के दिखाता क्या क्या पाया है। तो पांव क्यों जमीन पे रहेंगे जिसका हर दिन प्रेम में बीतता है, प्यार में बीतता है। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, प्रेम करो, प्रेम करो। और वो ऐसा प्रेमी है, सुंदरता नहीं चाहिए, योग्यता नहीं चाहिए, वो कहता मुझसे जुड़ जाओ सुंदरता भर दूंगा, योग्यता भर दूंगा, आप हां तो करो, आप हां तो करो, बस आपकी हां सुनने के लिए तैयार बैठा है वो भोलानाथ, और जीवन में उसे अलाउ कर दो, आज से उसे अपना बच्चा बना लो, रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी रूप में जोड़ लो, तो देखना जिसके बारे में लोग ग्रंथ भरे हुए हैं, वेद भरे हुए हैं, एक आपकी भी प्रेम कहानी बन जाए। वो और कुछ नहीं है, ये ग्रंथ वगैरह सब प्रेम कहानियां हैं भगवान की, और जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनकी प्रेम कहानियां। हम सदियों से उनके प्रेम कहानियां ही पढ़ पढ़ के सोचते हैं हमने प्रेम पा लिया। कब तक दूसरों के प्रेम की चर्चा करोगे, कुछ ऐसा करें हमारे प्रेम की भी लोग चर्चा करें, चर्चा करें, हमारे भी किस्से बने। किस्मत वाले हैं जिसके किस्से बनते हैं। ठीक है, ओम शक्ति। थोड़ा करें 5 मिनट मेडिटेशन, मुझे बता देंगे जब हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर आएंगे तो मुझे बता देंगे, कोई भी आकर मेडिटेशन करें 5 मिनट का, बिल्कुल प्रैक्टिकल मेडिटेशन, और इतना सुखदायी मेडिटेशन होगा। आप अपने मन को बस इतना कह दे केवल 3 मिनट, क्या कहना है, ओनली 3 मिनट, केवल 3 मिनट बैठना है। और मैं किसी भी को भी नहीं कहूंगा बच्चा शोर मचा रहा है, ये मचा रहा है, और आपने भी डिस्टर्ब नहीं होना अपने बच्चों से, प्रेम है ना आपका, प्रेम है, बच्चा ऐसे ऐसे भी कर रहा है, कान भी कर रहा है, तब भी आनंद में उधर डूब जाओ। देखा ना किचन में लोग माताएं खाना बनाती हैं तो मन पसंद सीरियल आ रहा हो तो सीरियल की तरफ ऐसे डूबे, बच्चा कहता है खाना खा ले, लिखा अटेंशन है ना, तो प्यार है। छोटे छोटे 2 अभ्यास कराऊंगा, उसका सुख लेना। लाइट जगी है तो जगी रहना, कोई फर्क नहीं, आराम से बैठेंगे, ऐसे करके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठना, लेकिन सुख लेना। इतना अच्छा अनुभव होगा आज परमात्मा के घर में, जहां परमात्मा अवतार लेते हैं, आते हैं, उस भूमि पे आप बैठे हो, ये कम सुखद अनुभव है। शुरू करते हैं। अभी आप अपना सारा ध्यान स्वयं पर लेकर आए, मैं इस कमरे में विराजित हूं, आसपास जो मेरे बैठे हुए हैं साथी कुर्सियों पर, उनको भी अनुभव करें। और मन के पर्दे पर पिक्चर बनाएं, जैसे एक मटका उल्टा रख दें और उसके अंदर एक छोटा सा दिया जला दें। वो छोटा सा सुंदर सा दिया, उसकी लो मटके को अंदर से प्रकाशित करती है। ऐसा ही एक सुंदर सी रोशनी का पुंज मेरे माथे में चमक रहा है, और इस मस्तिष्क को, इस पूरे सिर को, गर्दन से ऊपर के हिस्से को एक मटके की तरह देखें, अंदर वो जगमग कर रहा है। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य जहां लोग तिलक लगाते हैं, वहां अनुभव करें सुंदर सा दिव्य सितारा। वो आत्मा है, चमकता सितारा। महसूस करें मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो बैठे हुए हैं, उनके माथे में भी एक एक सितारा चमक रहा है। जो घर में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी भी पिक्चर मन में आती है, तो देखो उन सब के माथे में एक एक सितारा चमक रहा है। सभी सितारे इस देह में चमक रहे हैं। स्वयं को देखें, मैं आत्मा शांत हूं। ऐसा लगे जैसे फाउंटेन होता है, उसका पानी उछल उछल कर उसी पर गिरता है। ऐसा महसूस करें कि मुझे आत्मा से शांत की लहरें निकल निकल कर मेरे पर ही आ रही हैं, मेरे ब्रेन में, गर्दन, कमर, टांगे, हाथ, पूरे शरीर में अंदर से वो प्रवाहित हो रही। मैं बहुत बहुत शांति की अनुभूति कर रही, हल्कापन अनुभव हो रहा है, रूई से भी हल्का महसूस कर रही। महसूस करें मैं आत्मा देह से बाहर आ रही हूं, जिस तरह ड्राइवर कार से बाहर निकल आता है, इसी तरह बाहर आ जाएं और अपने शरीर को बैठा देखें। और इस कमरे से बाहर निकल जाएं, खुला नीला आसमान बादलों से भरा हुआ, पहाड़ों की तलहटी में सुंदर वातावरण को देखें, फिर इस कमरे में आए, शरीर में आकर बैठ जाएं और महसूस करें मैं इस देह से अलग हूं, अलग हूं और अलग हूं। ओम शांति, ओम ओम शांति। अभी हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने मन को कहना है, जो पहला अभ्यास किया, चाहे उसमें एक सेकंड भी मन एकाग्र हुआ हो, उसी को याद करना है, उसी को याद करना है। अपने मन को कहना है, शाबाश, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, अब इससे भी ज्यादा अनुभव होगा, दो मिनट का केवल। परम शक्ति के पास जाएंगे, उसका प्यार लेकर नीचे आ जाएंगे, बस इतना करना है। जैसे बच्चा खेलता हुआ जाता है, माँ के गले लगता है, वो उसको मुंह में को डाल देती है और वो फिर खेलने चला जाता है, बस इतना ही करेंगे। आनंद लेना है, प्रेम लेना है, प्रेमिका की तरह सुख लेना है। नींद के पर्दे पर दोबारा से पिक्चर बनाए, मैं इस कुर्सी पर विराजित हूं, सारा ध्यान जो मैंने पहना हुआ है उसकी ओर देखें, मन की आंखों से कपड़े कौन कौन से रंग के, क्या क्या पहने हैं, उसके अंदर देही, देही के अंदर हड्डियां, ब्लड और चेहरा, माथा, माथे के अंदर जहां बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा अंदर सुंदर सा सितारा। मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। महसूस करें मैं इस देह से बाहर निकल रही हूं। जैसे सुबह सुबह का सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों से ऊपर उठता है, ऐसा ही महसूस करें मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही हूं। देह से बाहर निकले, बाहर निकलते ही खुलापन महसूस करें, जैसे कोई बंद कमरे से बाहर निकला था। इस हाल से बाहर, बादलों से बाहर, नीले आसमान में, रूई का फाये से भी हल्की वो आत्मा ऊपर उठती जा रही, खुद को उड़ता देखें। नीचे गलियां, ट्रैफिक सब छोटा होता जा रहा है, उस लाल प्रकाश में प्रवेश कर जाएं, परम धाम जिसे कहते हैं। देखे जैसे कोई गंगा में दिए तैरा देता है, वैसे मैं आत्मा मां तैर रही हूं, बिंदु गहन शांति का अनुभव। और दूर एक सुंदर सा सितारा चमकता देखे। परम शक्ति भगवान शिव, अल्लाह खुदा वाहिगुरु, इन सबको हटा के कहे ये मेरा है, ये मेरा है। और देखे वो प्यार का सागर ज्योति बिंदु, उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। प्रेम का फाउंटेन है वो, जैसे कोई बहुत बड़ा फवारा होता है, उसका पानी उछल उछल कर उसी पर गिरता है और बच्चे उस फवारे के नीचे जाके बैठ जाते हैं और उसमें नहाते हैं। ऐसे उस आत्मा रूप में आप परम शक्ति के पास जाए, जैसे चुंबक खींचता है किसी को, वैसे खींचे चले जाए, उसके बिल्कुल करीब चले जाए, उसको महसूस करें और अपने मन को कहें, दिल को कहें, आज मैं परम शक्ति के साथ हूं, उसके सामने हूं, उसके प्यार को अनुभव कर रही हूं, वो मेरा बाबा है। और अनुभव करें, वहां से भी आवाज आती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मीठा बच्चा, तुझे मैं ही ढूंढ कर यहां तक लाया हूं। ये दिल से स्वीकार करें, उसका सुख लें। मन के पर्दे पर तीन पिक्चर, ज्योति बिंदु मैं, सामने शिव बाबा और परम धाम। इसी सुख को लेते हुए धीरे धीरे नीचे आए परम धाम से, लेकिन वो सुख और प्यार की अनुभूति साथ ले आए। जैसे शहद खाने के बाद शहद का टेस्ट मुंह में रहता है, ऐसा उस टेस्ट को साथ लेकर आए, कमरे में, देह में, माथे के बीच आकर बैठ जाए। लेकिन जो सबसे अच्छा पल लगा, अनुभव हुआ, उसको बार बार याद करें। क्या क्षण थे जब मैं शरीर छोड़ के गई, परम धाम में थी, उसकी लहरें मेरी तरफ आई, उसका सुख लें, आनंद लें, सुख भासे मन को, और इसी आनंदमय अवस्था में मन को भी शुक्रिया करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।